पृष्ठ संख्या 106, साक्षात्कारों का सुझाव। शिक्षण संस्थाएं तभी एक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं अगर वो स्वायत्त होंगी, अर्थात उनको विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाएगा। शिक्षण संस्थाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, पाठ्यक्रम भी प्रत्येक कॉलेज या विभाग में बनाएं। शिक्षक पर यह प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि पाठ्यक्रम पूरा करवाना है। शिक्षक के पास भी विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। कम से कम विद्यार्थी होने पर ही विद्यार्थी पर शिक्षक अपना ध्यान दे पाएगा। प्रश्न 2, स्वतंत्र संस्थाएं जैसे स्पिक मैके, ITC, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संकल्प आदि को क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए ताकि शास्त्रीय संगीत उन समुदाय के अधिक निकट आ सके। उत्तर, आज गैर सरकारी संस्थाएं भी शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्नशील हैं। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा शहरों में ही नहीं अपितु गांवों में भी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के कई गांवों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी प्रकार संकल्प भी एक ऐसी ही संस्था है जो नवीन प्रतिभाओं को मंच प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक बड़े शहर में शास्त्रीय संगीत के स्तर को ऊंचा उठाने में संगीत संस्थाएं सक्रिय हैं, किंतु इन संस्थाओं में भी संस्था के संस्थापकों द्वारा अपनी पहचान के लोगों को आगे आने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। समालोचकों द्वारा भी कई बार पक्षपात की भावना से समीक्षा की जाती है। कई बार इन कार्यक्रमों के विज्ञापन में भी वही छपते हैं जिससे बहुत कम लोग इस कार्यक्रमों को सुन पाते हैं। उन बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो अवश्य ही गैर सरकारी संस्थाएं शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य कर सकेंगी। प्रोफेसर अनीता सेन, जो कि जयपुर महाविद्यालय मध्य प्रदेश में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं एवं देश की जानी मानी गायिका भी हैं, आपसे किया गया साक्षात्कार। पृष्ठ संख्या 107। प्रश्न 1, वर्तमान समय में हमारी शिक्षण संस्थाएं शास्त्रीय संगीत के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में क्या क्या भूमिका निभा सकती हैं? उत्तर, पहला योगदान तो यह है कि संगीत का शिक्षण पाठ्यक्रम के स्तर पर हो रहा है। इसमें कम समय में एक निर्दिष्ट पाठ्यक्रम को विद्यार्थी तक पहुंचा दिया जाता है। ये बात तो स्पष्ट है कि अब तक जो संगीत लुप्त प्राय था या कठिन विद्या मानी जाती थी, वह धारणा समाप्त हो गई। जो बंदिशें पुराने जमाने में विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं हो पाती थीं, अब वो सही निर्देशन में बंधी होने के कारण उपलब्ध हो जाती हैं। न केवल बंदिशें, बल्कि इन बंदिशों का जो साहित्य है, अर्थात शब्द हैं, वो भी मिल जाते हैं। शोधकर्ताओं को भी इससे बहुत लाभ पहुंचा है और वे इसको शोध का कार्य बना रहे हैं। इससे लुप्त प्राय बंदिशें प्रकाशित हो रही हैं। तीसरा योगदान है कानसेन बनना। एक संगीतज्ञ को तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक उसको सही श्रोता न मिले। एक संगीतज्ञ कितना ही उच्च कोटि का राग प्रदर्शन करे, किंतु श्रोता अगर सूझबूझ वाले न हो या सुरताल की अतिरिक्त राग के स्वरूप आदि से परिचित न हो, तो उसके प्रदर्शन का कोई लाभ नहीं है। आज हमारी शिक्षण संस्थाओं से जो विद्यार्थी डिग्री उत्तीर्ण करके निकलते हैं, वो कम से कम तानसेन नहीं बन पाते तो अच्छे कानसेन अवश्य बन जाते हैं। उनको प्रचलित लगभग सभी रागों के बारे में मोटे रूप से तो पता चल ही जाता है कि अमुक राग के यह स्वर हैं, राग की क्या खूबी है, कौन सा ताल उसके साथ बना और बज रहा है। जब गायक वादक अलग अलग ढंग से सम पर आते हैं तो श्रोता दाद देते हैं। तो संगीतज्ञ को भी ऐसा श्रोता चाहिए होता है, ऐसे ही श्रोताओं के बीच प्रदर्शन का आनंद आता है। इस दिशा में शिक्षण संस्थाओं की योगदान अद्वितीय है। पृष्ठ संख्या 108, प्रोफेसर सेन का सुझाव। पहला प्रयास तो यह होना चाहिए कि इन शिक्षण संस्थाओं में अगर संभव हो सके तो एक टेस्ट रखा जाना चाहिए, जिससे उन विद्यार्थियों का चयन किया जा सके जिनमें कुछ प्रतिभा हो या थोड़ी बहुत वो संगीत में रुचि लेते हों। प्रायः यही होता है कि कई विद्यार्थियों को जब किसी अन्य विषय में प्रवेश नहीं मिल पाता तो वे संगीत विषय ले लेते हैं। संगीत में अधिक रुचि न होने के कारण वो कुछ विशेष सीख नहीं पाते। यह चाहिए कि बहुगणित की ओर ध्यान न दें, अपितु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिले। इसके साथ साथ अच्छे शिक्षकों की भी नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उन शिक्षकों से ही विद्यार्थी कुछ सीख कर एक अच्छे कलाकार या शिक्षक या श्रोता बन पाएंगे। ये अति आवश्यक है कि योगदान के आधार पर ही, योग्यता के आधार पर ही कलाकार शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। संगीत विषय अन्य विषयों से अलग विषय है, जिसके लिए अलग समय, रुचि और निष्ठा आवश्यक है। हमारी शिक्षण संस्थाओं की ओर से प्रयास किए जाने चाहिए कि संगीत के लिए समय की पाबंदी न हो। संगीत शिक्षकों को चाहिए कि वो कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कलाकार बनाने के लिए अलग से समय दें, और उन शिक्षकों को अधिक श्रम भी मिलना चाहिए जिसके लिए उनकी रुचि और अधिक बढ़े। प्रश्न 2, स्वतंत्र संस्थाएं जैसे स्पीक मैके, ITC, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संकल्प आदि को क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए ताकि शास्त्रीय संगीत जन समुदाय के अधिक निकट आ सके। उत्तर, आज स्वतंत्र संस्थाएं शास्त्रीय संगीत को विकसित करने में अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, प्रत्येक संगीत प्रेमी को कार्यक्रम देखने का अवसर मिला है। इन स्वतंत्र संस्थाओं को हमारी शिक्षण संस्थाओं से तालमेल रखना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में भी उच्च कोटि के विद्वान या मंच प्रदर्शक मिल सकते हैं। पृष्ठ संख्या 109, श्री गुरुदयाल सिंह जी, जो कि राजकीय महाविद्यालय बठिंडा पंजाब में संगीत विभाग में एक वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, से किया गया साक्षात्कार। वर्तमान समय में हमारी शिक्षण संस्थाएं शास्त्रीय संगीत के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में क्या-क्या भूमिका निभा सकती हैं? सर्वप्रथम तो यह आवश्यक है कि शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक उच्च कोटि के होने चाहिए, जिससे वे विद्यार्थियों को कुछ सिखा पाने में सक्षम हो पाएं। राजनीति प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है, जिस कारण शिक्षण संस्थाओं में भी प्रतिभाशाली व्यक्ति नियुक्ति के समय पीछे रह जाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का चुनाव शिक्षक के पद के लिए कर लिया जाता है जिन्हें अपने विषय से संबंधित बहुत ही अल्प मात्रा में जानकारी होती है। ऐसे शिक्षक शिक्षण संस्थानों के लिए अभिशाप हैं, अतः संगीत राजनीति से दूर रहकर ही शिक्षण संस्थाएं शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार व उसके स्तर को ऊंचा उठाने के दिशा में अच्छी भूमिका निभा सकती हैं। अच्छे शिक्षकों का भी यह उत्तरदायित्व बनता है कि वो कक्षा में वे कुछ तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चुनाव करके उनको कक्षा के उपरांत कुछ समय अवश्य सिखाएं, क्योंकि प्रत्येक छात्र को विद्यार्थी तो कलाकार नहीं बन सकता। तीसरा, पाठ्यक्रम इतना अधिक न हो कि विद्यार्थी तैयार ही न कर पाए, केवल 3-4 राग ही होने चाहिए। विद्वानों के मतानुसार एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, अर्थात 3-4 रागों को ही विद्यार्थी समझकर गाएं बजाएं तो उनको अन्य राग करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इससे शिक्षा के स्तर भी ऊंचा उठेगा। आज शिक्षण संस्थाओं में सांगीतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन एक सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है, जिससे विद्यार्थियों को केवल अपनी प्रतिभा को आंकने का अवसर ही नहीं मिलता, किंतु मंच पर भी प्रदर्शन करने की गुण मिलते हैं। किंतु आज जितनी भी प्रतिभाएं और प्रतियोगिताएं संपन्न होती हैं, उनमें निर्णायक मंडल का निर्णय असंतोषजनक होता है। पुरस्कार केवल शिक्षण संस्था उस संस्था के शिक्षक के नाम कर दे दिया जाता है। ऐसे में विद्यार्थी का प्रदर्शन द्वितीय हो जाता है, जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थी के साथ अन्याय होता है। कम प्रतिभाशाली विद्यार्थी आगे आ जाते हैं, अतः इस दिशा में सुधार अति आवश्यक है। निर्णायक सही निर्णय दें, तभी उभरती प्रतिभाओं को आगे आने के अवसर मिल पाएंगे। परीक्षाओं की अभी आज यही दशा है, यहाँ भी सुधार होना अति आवश्यक है। अच्छे गाने बजाने वाले विद्यार्थी को कम और कम परिश्रम करने वाले विद्यार्थी को अधिक अंक मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 110। सब अच्छे विद्यार्थी भी रास होकर परिश्रम करना बंद कर देते हैं। नौकरियों में भी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने चाहिए, जिसमें वे अच्छे शिक्षक सिद्ध हो सकें। अगर इस दिशा में कुछ सुधार किए जाएं, तो वास्तव में हमारी शिक्षण संस्थाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। सरकारी संस्थाओं ने जहां विषय की अधिक से अधिक सुलभता प्रदान कर शास्त्रीय संगीत को जन समुदाय के पास लेकर खड़ा किया है, वहां स्वतंत्र संस्थाओं ने उसके साथ साथ कलाकारों को प्रदर्शन के अनेक अवसर प्रदान कर शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न केवल कलाकारों को ही बल्कि कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी कक्षाएं प्रदर्शन के अवसर प्रदान कर रही हैं। इन अवसरों को चाहिए, इन संस्थानों को चाहिए कि वो कलाकारों के ऑडियो वीडियो कैसेट्स भी बजाकर बाजार में उपलब्ध करवाएं, ताकि अधिक से अधिक सांगीतिक जिज्ञासु लाभान्वित हो सकें। इन संस्थाओं को संगीत के शास्त्र पक्ष की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सेमिनार, गोष्ठियाँ, चर्चा सभाओं का आयोजन, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन का भी आयोजन करते रहना चाहिए, जो शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार व उसकी स्तर वृद्धि की दृष्टि से भी सराहनीय कदम होगा।